So we now continue on in chapter 12 of Hebrews.
और अभी हम इब्रानी वही 12 में हम लोग हैं.
We'll be looking at sort of verse 14 onward. We already talked about 14 some, but we'll be looking at the rest of the chapter, Lord willing.
और 14 आयत को थोड़ा ही देखेंगे, उसके बाद हम बाकी जो 15 से नीचे है आखिर तक उसको देखेंगे.
So would someone please read the chapter for us?
और इसीलिए कोई हमारे लिए पढ़ने ना इट इज देयर टर्न. नहीं हाँ पूरा पूरा
सबसे मेन यात्रा को
पूरा पहले से
इस कारण जब कि गांव का ऐसा बड़ा शब्द है हमको घेर लिया है तो आओ हम हर एक होने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है गिरस्त दौड़े और जिसको आप विकर्ता और शुद्ध करने वाले यीशु
का होल चैप्टर
हमारा परमेश्वर प्रसन्न करने वाले आप
So we face a great difficulty.
और हम बहुत सारे समस्याओं से होके हम जाते हैं.
From verse 14 through the end of the chapter.
और 14 आयत से लेके पूरे उसके आखिरी तक.
Is a sequence of thoughts.
और जो यानी हमको सोचने के लिए क्रमानुसार हम सोचेंगे.
That all flow one from another.
और जैसे कि एक दूसरे में जुड़ा है वो.
And yet it builds a picture as a whole.
और ये सारा चीज मिलके एक छवि को जैसे दिखाता है.
That you need all the thoughts to put together to make.
और ताकि ये सारा चीज को मिला के आपको देखना पड़ेगा.
But when you look at all the parts.
परंतु यानी एक छोटा-छोटा टुकड़ा करके जब देखेंगे.
It's easy to forget the whole.
आप पूरे विषय को भूल जाएंगे. इसलिए पूरा को देखना है.
So I've been debating about the best way to explain it.
और मैं इसको यानी बेहतर रूप से जैसे कह पाऊंगा इसके बारे में जब मैं सोच रहा था.
And I'm just going to do the best I can.
और मैं कैसे बेहतर कर पाऊंगा ये मैं करूंगा मैं.
From verse 14 and following, what goes on is another warning.
और 14 आयत से लेकर जो नीचे आखिर तक है ये हमारे लिए एक सतर्क समूह है.
He tells us that we ought to follow peace and holiness, without which no man will see the Lord.
और वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पवित्रता के बिना जो कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं पाता है उसी पवित्रता और शांति में हमको रहना है.
So let me start by asking you a question.
एक सवाल के साथ मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ.
I'm not expecting you to actually answer verbally.
और ये आप मुझे ऐसे अभी उत्तर दे बोल के मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन उसको सोचिए.
But how difficult is it?
परंतु ये कैसा मुश्किल है.
To live in peace.
और कितना मुश्किल है कि हम शांति में हमेशा रह पाएं.
And display holiness.
और पवित्रता को अपने जीवन में दिखाएं.
When there is no trouble in your life.
जब आपके जीवन में कुछ यानी समस्या नहीं होता है.
When there are no trials.
जब परीक्षा नहीं होता है.
When there is no tribulation.
जब ताड़ना नहीं होता है.
When there is no persecution.
जब ताड़ना नहीं होता है.
You have an easy time.
आपके पास एक सहज समय जब होता है तभी.
Doesn't the world have an easy time in those situations?
और ये दुनिया ऐसे परिस्थिति में दुनिया के पास ऐसा यानी सहज समय नहीं होगा.
What marks out the child of God is different when everything is easy.
और ये प्रभु के जन के हिसाब से प्रभु के बच्चे के हिसाब से क्या यानी दिखाई पड़ता है उसके जीवन में जो दुनिया को इजी नहीं लगता परंतु वो उसी को करता है.
In the Sermon on the Mount, when Jesus says, "Love your enemies,"
और जहाँ पे पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने शत्रु से प्रेम रख.
Love them that treat you badly.
और जो तुम्हें सता रहे हैं उनसे प्रेम रख.
He says it's easy to love your family and your friends.
वो कह रहे हैं कि अपने परिवार को सगे संबंधों को प्यार करना ये सहज है ये दुनिया लोग करते हैं.
The Hindus love each other.
और हिंदू लोग करते हैं.
The Muslims love each other.
मुस्लिम अपने आप से प्रेम रखते हैं.
Buddhists love one another.
बुद्धिस्ट जो अपने आप से प्रेम रखते हैं.
I'm not sure about the atheists.
और जो परमेश्वर को नहीं मानते उनके बारे में मैं कह नहीं सकता.
But it's generally easy to do.
परंतु ये यानी सहज है यानी अपने लोगों को प्यार करना.
What's hard is to love those who are hard to love.
परंतु कठिन क्या है यानी जिनको प्रेम किया नहीं जा सकता उससे प्रेम करो बोल के प्रभु कह रहा है.
To love your enemy.
और शत्रु से प्रेम रखो बोल के.
In the same thought process.
और ऐसे ही यानी अगर सोचेंगे हम.
It's easy to look like you're living in peace when there is peace.
और जहाँ पे यानी शांति चारों तरफ है और आपको लगता है कि मैं शांति में हूँ बोल के.
When there are no difficulties in your life, life seems peaceful.
और आपके जीवन में जब समस्या नहीं होता है और जीवन सुखद होता है तभी.
But how does that mark you as different from the Hindu?
परंतु आप कैसे अलग तरीके से पहचाने जाएंगे हिंदू भाई बहनों से.
How does that mark you as different from the Muslim?
मुस्लिम भाई बहनों से आपको यानी ये क्षेत्र में कैसे पहचाने जाएंगे आप.
Or anyone else who doesn't know our God.
और जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको और आपके साथ तुलना करने से कैसे पहचाने जाएंगे आप.
No, it's when we go through the difficulties is that's when we are revealed as being child of God.
परंतु जब हम परीक्षा या समस्या होते हुए जाते हैं तभी पता चलता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं तभी पता चलता है हम परमेश्वर के बच्चे हैं.
It's in the difficulties when we get the peace that passes understanding.
और जो यानी ये समस्याओं के बीच में ही हम वही परमेश्वर के शांति का हमारे जीवन में हम पाते हैं.
The peace makes sense when there is no difficulty.
और अगर कुछ समस्या नहीं है और आप शांति में हैं बोल के कहेंगे उसका कुछ अर्थ ही नहीं.
It doesn't make any sense when the difficulties come.
और जब समस्या आएगा तभी उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा.
That's what marks us as a child of Jesus Christ.
और इसीलिए ये हमें बताता दिखाता है यानी परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते.
And so it's important to have that in our mind when we start to look at these verses.
और जब ये सारे आयतों को हम देखेंगे ये हमारे मन मस्तिष्क में रहना जरूरी है.
Because he's giving us another warning.
और क्योंकि हमें एक और सतर्क होने के लिए कह रहा है.
He says, looking diligently lest any man fail of the grace of God.
और कहता है कि ये ध्यान रखे ताकि कोई आदमी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो.
Looking diligently.
और ध्यान से देखना है.
Where did you see that word looking before?
और यहाँ पे एक यानी शब्द है देखना.
That's verse 2.
और ये दो याद में था.
Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
और विश्वास और सिद्धिदाता यीशु की ओर देखना है हमें.
And so, just as loving your neighbor, just as loving your enemy takes work.
और जैसे अपने शत्रु से प्रेम रखना जैसे है.
Focusing and looking to Jesus during the midst of suffering and affliction takes work.
और उसी तरह यानी समस्याओं के बीच प्रभु में थामे प्रभु को थामे रहना उसी के पास रहना ये भी जरूरी है.
You have to discipline yourself to make sure that you're doing it.
और आपको अनुशासित खुद को करना है ताकि आप ये कर रहे हो बल्कि पता चले.
It goes back to the same word in chapter 11 verse 6.
और 11:6 में जैसे लिखा जाता है उसी के साथ ये जाता है.
But without faith it is impossible to please him.
और विश्वास के बिना उसको संतुष्ट करना असंभव है.
For he that cometh to God must believe that he is.
और जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना कि परमेश्वर है.
And he that he is a rewarder of them that diligently seek him.
और वो उनका जो विश्वास है पुरस्कार देता है उस पर वो ध्यान रखे.
He's using these words that we've already spoken of.
और ये सारे यानी शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है जो हमें पहले से कहा है.
And combining them in this warning.
और ये सतर्क में उसे जोड़ रहा है वो.
And so he says, looking diligently lest any man fail of the grace of God.
इसलिए और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित हो जाए.
Who is he talking to?
और किसके बारे में कह रहे हैं?
Well, he certainly has been talking to us.
वो सही में हमसे वो बातें कर रहे हैं.
But he's saying again, there is a danger.
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक ऐसा यानी danger है.
There are those who look like, act like, and sound like Christians.
ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो मसीह का दिखते हैं, सुनाई पड़ते हैं, काम तो करते हैं.
But when it comes down to it, they choose the world instead of choosing Christ.
परंतु एक ऐसा समय आता है, वो दुनिया को चुन लेते हैं और यीशु मसीह को छोड़ देते हैं.
And he uses Esau as an example.
और इसीलिए हमको यहाँ पे और उनको एक उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे लिखा जाता है.
So you think about Jacob and Esau.
आप यीशु के बारे में देख हिसाब के बारे में जान पाते हैं.
We talked about the blessing.
आप पिछले दिनों उसके आशीष के बारे में बात किए थे.
Esau looked like a child of Isaac.
और हिसाब जो था वो ईसाक के बेटे के जैसा ही था दिख रहा था.
Indeed, he was his father's favorite.
और वो यानी सही में उसके पिता के बहुत प्रिय था.
And Isaac was hoping the blessing would go through him.
और इसाक जो सोच रहे थे भरोसे में थे कि ये इसाक के जरिए वो आशीष जाएगा.
That blessing was the wife of God in Christ.
और जो आशीष है ये यीशु मसीह के जरिए है.
But what did Esau do?
परंतु इसाक ने क्या किया?
Before the blessing was even on the table.
और वो आशीष जो यानी टेबल के ऊपर था यानी आशीष आने ही वाला था.
He's been out hunting and he's been out in the wilderness for who knows how long.
और क्या पता कितना देर तक वो जंगल में रहा शिकार ढूंढने में के लिए.
And for whatever reason he's unable to shoot any animal.
और हो सकता है वो यानी कोई पशु को नहीं मार सका.
He's unable to trap one.
हो सकता है किसी को यानी वो पकड़ नहीं सका.
And so he's incredibly hungry.
और इसीलिए उसको यानी यानी भूख लगा.
His hunger must have been severe.
और उसका भूख जो यानी उसको बहुत लग रहा था.
Because when he gets back to the house,
जब वो अपने घर की तरफ आया.
He sees Jacob and he's eating a bowl of porridge.
और यहाँ पे वो देखा कि याकूब जो है वो दाल पका रहा है.
Something like oats.
और जैसे हम ओट्स खाते हैं उसी तरह.
And he says, give me some of that.
और ये कहा मुझे थोड़ा ये दे दो.
And Jacob says, no.
और याकूब ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा.
Brothers acting like brothers.
और भाई भाई की तरह ही व्यवहार करते हैं.
And Esau says, I want some.
और ईसाव जो कहा मुझे कुछ चाहिए.
And Jacob says, well, sell me your birthright.
और याकूब ने कहा कि तेरा जो पहलौठा होने का वो मुझे बेच दे.
Unbeknownst to Isaac or Rebecca,
और ये रेबेका और ईसाव जो उसको पता नहीं था ये बारे में.
Jacob is asking for the blessing from Esau.
और याकूब उसका मतलब है याकूब जो है वो आशीष को मांग रहा है जो ईसाव के ऊपर आने वाला था.
And if you've ever met anybody who exaggerates a lot,
और आप ऐसे व्यक्ति को जो देखते हैं जो बेहतर उसी हिसाब से करते हैं.
Esau certainly is exaggerating here.
और यहाँ पे यानी याकूब जो है वैसे कर रहा है.
And he places no faith in God.
और ईसाव ऐसा कर रहा है और वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा.
And he says, what good is my birthright if I'm dead?
और वो कह रहा है कि अगर ये पहलौठा होने का अधिकार मुझे क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जब अगर मैं मर रहा हूँ.
And he's showing that he has no confidence in God to take care of him.
और इसका मतलब वो दिखा रहा था कि परमेश्वर पर वो कोई भरोसा नहीं रखता है कि परमेश्वर उसका ख्याल रखे.
And so verse 16, the writer of Hebrews is saying, be careful lest there is any profane person or fornicator like Esau.
इसीलिए लेखक यहाँ पे 16 आयत में कहते हैं ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसाव के समान अधर्मी हो
who sold his birthright for one bowl of food.
जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद को बेच डाला.
He was counting the physical food better than eternal inheritance.
और वो अपने वो शारीरिक यानी वो जो उसके सामने रखा जो भोजन उसको बेहतर माना ताकि आने वाले जो चीज है उसको बेहतर नहीं माना.
And the writer of Hebrews is telling us that there might be people like that among us.
और इब्रानी का लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे ही लोग होंगे.
That there are those that will look like, act like, and sound like Christians.
ऐसे लोग होंगे जो मसीह की तरह दिखते हैं, कहते हैं, यानी बुलाए जाते हैं, ढोंग करते हैं, परंतु
who are not because they've never trusted Christ.
परंतु ये लोग सही में मसीह हैं क्योंकि वो लोग मसीह पर भरोसा कभी किए ही नहीं.
This is not a fall from. This is a fail of.
और ये दूर चले जाना नहीं परंतु ये गिरने का दिखा रहा है.
This is the same language used in Romans 3:23.
और रोमी 3:23 में यही चीज को लिखा जाता है.
For all have sinned and fallen short of the grace of God. और
सबने पाप किया परमेश्वर का अनुग्रह सब लोग नीचे गिर गए हैं.
That's what he's saying.
और ये वहाँ पे ये कह रहे हैं.
And we need to understand it.
हमको समझना है.
Because when Esau then doesn't receive the inheritance.
और जब ईसाव जो है वो अपने अधिकार को यानी वो आशीष को नहीं मिल रहा है उसको.
He was upset.
और वो यानी वो अपसेट हो गया वो.
He's like, it should have been mine.
और कह रहा कि ये एक्चुअली मेरा ही होने वाला था.
And he repents of what he did.
और इसलिए मन फिराने के लिए कोशिश किया ताकि उसे मिले परंतु नहीं मिला.
But he found none.
परंतु उससे वो आशीष नहीं मिला.
Why? Because he never sought it with God.
क्योंकि वो परमेश्वर साथ कभी ऐसा नहीं रहा.
Instead of focusing on the things he had done wrong.
और यानी जो वो गलती किया उसको गौर ना करके.
He blamed his brother and wanted to kill him.
और उसके भाई के ऊपर दोष ठहराया उसको मारने चाहा.
And that's the way these individuals that the writer of Hebrews is talking about.
और इब्रानी का लेखक ऐसे ही कुछ व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं.
Because sometimes they're so focused on the here and now, they lose sight of the eternal.
और कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे यानी इस दुनिया का बहुत सारे चीजों के लिए फोकस करते हैं और जो अनंत काली चीज है उसे हरा बैठते हैं.
But that's not the only warning he gives us.
और यहाँ पे यही खाली सतर्कवाणी वो नहीं दे रहे हैं.
Look at the second part of verse 15.
और 15 के दूसरा भाग को जब देखते हैं हम.
Lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled.
या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए.
See, in the same verse, he's telling us there are those among us that look like, act like, and sound like Christians, but are not.
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई कितने व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में मसीह की तरह दिखते हैं, कहते हैं, बुलाए जाते हैं, परंतु नहीं है सही में.
And we need to be careful that we're not one of those.
और हमको ये ख्याल रखना कि हम उनमें से जैसे एक व्यक्ति के जैसे ना हो.
But on the other hand, there are times when we as Christians,
परंतु दूसरे भाग में हम मसीह होने के नाते ऐसे समय आता है
allow the things we don't receive or the things we do receive.
और जो चीज हम ग्रहण करने वाले थे और ग्रहण नहीं किए हैं ऐसे सारे चीज में.
To become a root of bitterness within us.
और हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाता है.
And although that is not as bad as the first.
और जो यानी पहला यानी आपको मिला है उससे जो पहला बेहतर नहीं था.
What it means is we've lost sight of our Savior.
इसका मतलब क्या है हम यानी अपने उद्धारकर्ता की ओर देखना हम लोग छोड़ दिए हैं.
We've lost sight of the contradiction of sinners that he went through.
और वो जो यानी वो पापियों के विरुद्ध यानी पापियों के विरुद्ध में जो किए वही चीज को हम देखना छोड़ देते हैं.
When if I went through my life for 30 years saying I want to be like the people who don't have migraines.
और मैं 30 साल के अंदर मैं बता सकता हूँ मैं उन लोगों के जैसा होना चाहता हूँ जो यानी जिनके सर में माइग्रेन नहीं होता.
That would show a root of bitterness within me.
हो सकता है ये मेरे जीवन में कड़वाहट लाता है माइग्रेन.
Because other people received something I didn't receive.
और क्योंकि बहुत बहुत लोग ऐसा कुछ ग्रहण किए हैं जो मिला है मुझे नहीं मिला है.
For over a decade.
और बहुत सालों के लिए.
I would go through life and count pain-free days in a month on one hand.
और मैं बहुत सारे दिनों में बहुत सारे सालों में ऐसे बहुत कम दिन हो गया जहाँ पे मुझे यानी कष्ट नहीं मिला.
And I could sit back and say, what was me?
और मैं बैठ के कहा कि मेरा जीवन हाय है.
Why me?
मैं क्यों?
Why didn't he give this to somebody else?
और ये जो कष्ट मुझे आ रहा है दूसरों को कहीं क्यों नहीं मिल रहा है ये?
What good would that do?
और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं?
Where's the benefit?
और कहाँ पे यहाँ पे फायदा है?
There isn't one.
यहाँ पे नहीं है फायदा.
If I sit down and say, why didn't God give me the things I want and give me the things I don't want?
और मैं अगर बैठ के कहूँ कि जो मुझे चाहिए प्रभु उन्हें दे रहा है और नहीं चाहिए नहीं दे रहा है.
I'm looking around at all the other people that I see and saying, they got what I didn't get.
और मैं देख रहा हूँ मेरे चारों तरफ लोगों को यानी मुझे नहीं जो मिला है उनको सब मिल गया है.
But where are we supposed to be looking?
परंतु हम किसकी और किस तरफ देख रहे हैं हम?
Am I supposed to be comparing myself to my neighbor?
और मैं अपने यानी पड़ोसी के साथ तुलना कर रहा हूँ क्या?
Or am I supposed to be looking to my Savior?
क्यों यार मैं मेरे उद्धारकर्ता की ओर देख रहा हूँ मैं?
Because when I compare myself to the Savior,
जब मैं मेरे उद्धारकर्ता के साथ मेरे तुलना कर रहा हूँ,
my suffering is small.
मेरा जो दुख है छोटा है.
My suffering is minimal.
मेरा जो दुख है बहुत ही कम है.
Any persecution that I face will be small compared to his.
और वो जो दुख सहते गया उससे जब मैं मेरे यानी दुख को तुलना करता हूँ बहुत ही कम है वो.
Because he is the savior, he is the creator of all things.
क्योंकि वो उद्धारक है वो सारी चीजों का सृष्टि करता है वो.
The thought that he should suffer any persecution should be far from the mind.
और जो वो जितना चाह यानी दुख उठाया ये मेरे मन से बाहर है.
And so we ought to examine ourselves and follow peace with all man.
और इसीलिए हमें यहाँ पे अपने आप को जांचना है और जितना हो सके लोगों के साथ शांति में रहना है.
Looking diligently to the Savior.
और प्रभु की ओर ध्यान रखना है.
So that we're not like Esau.
और ताकि हम ईसाव के जैसे ना हो पाए.
In looking to this world instead of the things of Christ and not even have eternal life.
और ऐसे लोगों के लिए जो यानी दुनिया के तौर तरीके को देखते हैं दुनिया में खुश होने के लिए चाहते हैं परंतु अनंत काली चीजों को खो देते हैं.
But if we're a Christian, that we're not like Esau.
और मसीह होने के नाते तो मैं ईसाव के जैसा नहीं होऊंगा.
For the same reason.
और इसी कारण.
Because then we're going to be a bitter Christian.
और उसका मतलब अगर हो जाते हैं तो हम एक कड़वा मसीह बन जाते हैं.
I don't know how many bitter Christians there are in India.
मुझे पता नहीं भारत में ऐसा मसीह लोग कितने हैं बिटर यानी कड़वा क्रिश्चियन.
And again, I don't know anybody's heart.
और मैं किसी के दिल को या हृदय को भी नहीं जानता अभी.
But I've met quite a few seemingly bitter Christians in England and in America.
और परंतु अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसे कुछ मसीहों को देखा हूँ जो कड़वे हैं.
Because they thought they didn't get what they deserved.
और क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला परमेश्वर की ओर से.
Or they got what they didn't deserve.
और जो उन्हें जो मिला है वो उनको मिलना ही नहीं चाहता ऐसा चीज उनको मिला.
And I can tell you this from experience.
और मैं अपने अनुभव के साथ आपको ये कह सकता हूँ.
And from study of scripture.
और बाइबल अध्ययन के द्वारा.
I do not want what I deserve.
और यानी मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं यानी मैं चाहता हूँ.
What I want is what Christ gives me because of what he deserves.
परंतु मैं चाहता हूँ कि वो जो चाहता है मेरे जीवन के लिए वो मुझे मिले.
You think about some of the examples that we've had.
और कुछ चीजों को उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखे हैं पहले से.
Whether it's in chapter 11.
हो सकता है ये 11 अध्याय में हो.
We're looking at others like Cain and Lot.
और लूत के बारे में, कैन के बारे में.
We don't want what we deserve.
और हम ये नहीं चाहते कि हमें जो मिले वो वही मिले, जो चाहिए वो मिले.
What we deserve is death and torment in hell.
और हमें एक्चुअली क्या हमारा योग्यता क्या है कि हम नरक में जाएं.
What I want is what Christ deserves.
परंतु मैं इसलिए चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में जो चाहते हैं मैं वही चीज को चाहता हूं.
Peace and everlasting righteousness.
और वो यानी क्या है, शांति है और अनंतकालीन धार्मिकता है.
And although I would love to have a day that was nice and easy.
और मैं ऐसा दिन चाहूंगा जो मेरे लिए अच्छा सहज होगा.
Wouldn't we all?
हम सब चाहते हैं.
But he'll give strength to get through because there is a life of that ahead.
परंतु वो हमें ये बल देते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा दिन आ रहा है जो एक मृत्यु का दिन होगा.
As he told us in chapter 4, there is a rest that remaineth for the people of God.
और वो चार अध्याय में जैसे कह रहे हैं कि एक ऐसा दिन वो ठहरा है जो विश्राम का दिन होगा उनके लोगों के लिए.
Look forward to that rest.
और इसलिए उसी विश्राम की ओर देखना है हमें.
So the writer of Hebrews wants to expand the difference.
और इसीलिए इब्रानी का लेखक यहाँ पे जो अंतर को विस्तार रूप में कह रहे हैं.
And he's going to refer back to the giving of the law.
और इसीलिए वो व्यवस्था के बारे में फिर कह रहे हैं.
And compare it to where we've come.
और हम कैसे आए हैं उसके बारे में कह रहे हैं.
But the purpose in stating that is the same purpose in telling us about Esau.
और परंतु ये उद्देश्य जो कहने में है और ईसाव के पास जो ईसाव के बारे में कहने में जो उद्देश्य था उसी के हिसाब से.
It is the highlight that we don't want what we deserve.
और इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे उसको वो दिखा रहा है कि हम वो नहीं है जो हम हैं होने वाले हैं.
We don't want the law or the carnal commandments that bring about death.
और यानी जो व्यवस्था मूल रूप में शारीरिक रूप में हमें मृत्यु देता है वो हमें नहीं चाहिए.
We want grace and truth and peace through our Lord Jesus Christ.
हमें अनुग्रह, शांति और धार्मिकता यीशु मसीह के जरिए चाहिए.
So read verses 18 through to 24.
18 से 24 कोई पढ़े.
So Moses, the writer of Hebrews,
और इब्रानी का लेखक,
gives us a comparison between Mount Sinai
और जो पहाड़ सिनै पहाड़ है उसके साथ,
and Mount Zion
और जो सियोन पहाड़ है उसके साथ वो तुलना कर रहे हैं.
But the Mount Zion he's talking about is not Jerusalem.
और यहाँ पे जो माउंट यानी सियोन है वो यरूशलेम वो नहीं है.
It's the new Jerusalem.
ये नया यरूशलेम के बारे में है.
And he says seven things about Mount Sinai.
और यहाँ पे वो सात चीज को यानी सिनै पहाड़ के बारे में कह रहे हैं.
And he says seven things about Mount Zion.
और यहाँ पे सात चीज है तो यानी सिनै सियोन के बारे में कह रहे हैं.
Now I would caution you.
और मैं आपको यानी यहाँ पे बताना चाहूंगा.
Not to get carried away with every number that exists in Scripture.
not to get carried away with every number that exists in scripture.
और ये यानी बाइबल में जो जितने सारे चीज हैं सब चीज का नंबर आप करें बोल के मैं नहीं कह रहा हूं.
There are important numbers.
बहुत सारे ऐसे यानी मुख्य इंपॉर्टेंट नंबर हैं.
The number 3 is for perfection.
और नंबर 3 जो है ये सिद्धता का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है.
Because God is 3 in 1.
क्योंकि हमारा परमेश्वर तीन में एक, एक में तीन परमेश्वर है.
And the number 7 is for completion.
और सात नंबर जो है ये पूर्णता का नंबर है.
Whenever you see a list of 7,
और जब एक जगह पे स्क्रिप्चर में आपको सात नंबर पाया जाते हैं,
it's giving you the complete picture.
इसका मतलब आपको एक पूर्णता मिलता है वहाँ पे.
We learn this from creation.
हम यानी हमारे सृष्टि की संरचना में देख सकते हैं.
God created the heavens and the earth in 6 days.
आप परमेश्वर सारा पृथ्वी आकाश उसमें सारे चीजों को 6 दिन के अंदर बनाए.
And rested on the seventh day, showing that it was complete.
और सातवां दिन विश्राम किया कि ये सारा चीज पूरा हो जाए.
You'll read the same thing in the Proverbs.
आप नीति वचन में ये सारे पढ़ सकते हैं भी.
Where I'll say 6 things the Lord hates.
और लिखा जाता है कि 6 चीजों को परमेश्वर घृणा करते हैं.
And then he adds the 7.
उसके बाद फिर सात भी कर रहे कह रहे
हैं. The list.
वो यानी वो सूची में वो जोड़ रहे हैं.
He does the same thing with the things the Lord loves.
और जो परमेश्वर प्रेम करते हैं उसी के साथ भी वो जोड़ रहे हैं.
He gives us the attributes of the Spirit in Isaiah 11 in the same way.
और उसी तरह यशायाह 11 में वो आत्मा के बारे में वहाँ पे वो कह रहे हैं उसी हिसाब से.
And so he gives us a list of 7 things for Mount Sinai.
और यानी पसीने पहाड़ के बारे में यहाँ पे सात चीजों को बता रहे हैं आप लिख सकते हैं.
This is where Moses received the law.
और यहाँ पे जहाँ मूसा परमेश्वर की ओर से व्यवस्था को प्राप्त किए.
And notice what he says.
और ध्यान दीजिए कि आप क्या कह रहे हैं.
You're not come to the mount that might be touched.
और यहाँ पे लिखा जाता है तुम पहाड़ के पास आके उसे यानी आप छुओ मत.
Was had a blazing fire.
और वहाँ पे क्या था आग था.
Nor on the blackness
और काली घटा
and darkness
अंधेरा
and tempest
और आंधी के पास
and the sound of a trumpet
और तूरी ध्वनि
and a voice that scared everybody who
और
heard it
और बोलने वाले ऐसे सब जो जिसके पास कोई नहीं जाते थे.
And he explains for us what he means by that.
और यहाँ पे वो यानी विस्तार रूप से बता रहे हैं इसका मतलब क्या है.
You see, we think of the voice of Jesus.
हम जान पाते हैं कि जो मसीह का आवाज है.
And we think of the sound of our shepherd's voice.
और जो हमारे पालनहार यानी कर्ता का यानी हमारा चरवा का वॉइस है.
It's the one who loves us and cares for us.
और ये जो हम उससे प्रेम रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, उनका आवाज है.
But when God spoke from the mountaintop, the Ten Commandments, what happened?
परंतु 10 आज्ञा जब परमेश्वर सीनै पहाड़ से दे रहा था.
The end of verse 19.
19 आयत में उसमें लिखा जाता है.
They that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore.
जिसके सुनने वालों ने ये विनती की कि आप हमसे और बातें ना की जाए.
If people come and ask you why doesn't God speak from heaven?
और अगर लोग आके आपके आपसे कह सकते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से बातें क्यों नहीं कर रहा है.
You can tell them one of two things.
आपको आप ये दोनों से चीज बता सकते हैं.
And both of them you've learned in the book of Hebrews.
और दोनों चीज आप इब्रानियों से सीख सकते हैं.
Number one, God has spoken from heaven through his son Jesus Christ.
आप परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग से बातें किया है.
And if you don't want to hear from him,
अगर उनसे बात आप यानी उनसे सुनना नहीं चाहते हैं,
then you don't want to hear from God from heaven.
और आप परमेश्वर की ओर से सुनना नहीं चाहते हैं.
Because if he speaks according to the law,
अगर व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग से बात करता है,
you won't be able to handle it.
तो आप अपने आप को रख नहीं पाएंगे.
Because not only were the people afraid,
और ना खाली ना लोग डर गए.
And not even an animal could touch the mountain.
और ना कोई पशु पहाड़ को छुआ.
It got to such a point that Moses says, "I exceedingly fear and quake."
मूसा खुद कह रहा है कि मैं डर गया बोल के.
He had already spoken with God.
वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा
था. He was at the burning bush.
अब वो जलते हुए झाड़ के पास था.
And yet he was quaking with fear.
और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो खुद डर गया परमेश्वर की आवाज सुनकर.
Because sinful flesh before a holy God should quake with fear.
क्योंकि पापमय शरीर जब पवित्र खुदा के सामने रहता है तो वो डरना ही है.
That's the exact reaction that every single person should have.
और ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ये रहना जरूरी है ऐसे.
And that is why in Psalm 1,
इसीलिए वचन संहिता 1 में,
when the writer of the psalm says the When the writer of the psalm says that the wicked will not stand in the judgment,
aur vajan sahita ek mein lekhak jaise kehte hai ki adharmi aur koi parmeshwar ki mandali ke kalishya mein nahi rahenge,
they're not going to stand in the congregation of the righteous.
wo dharmik kalishya ke andar nahi rahenge,
because they still have the punishment to come.
क्योंकि वो अभी भी चाहते हैं कि वही दंड उनके ऊपर आए.
Their sin hasn't been taken away.
और उनका पाप अभी तक लिया नहीं गया है.
So they cannot stand before a holy God.
इसीलिए पवित्र परमेश्वर सामने वे लोग खड़े नहीं हो सकते.
But if you are a believer in the Lord Jesus Christ, that's not true for you.
और परंतु ये आप यानी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके लिए भी ये है.
He took your chastisement and your punishment on the cross.
और परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके सारे चीज को क्रूस पर ले लिया है.
So that you are no longer in sin.
इसीलिए आप और पाप में नहीं हैं.
So that God sees you as a son.
इसलिए प्रभु यानी परमेश्वर आपको बेटा के हिसाब से देखता है.
As the brother of Christ.
और यीशु के भाई के हिसाब से देखता है.
A co-heir with him.
और उसके साथ सह अधिकारी के रूप में देखता है.
So in that same congregation, when all the wicked are bowing the knee and confirming that Jesus is Lord.
और वहाँ पे जहाँ पे सारी कलीसिया के अंदर जहाँ पे अधर्मी लोग अविश्वासी लोग परमेश्वर के सामने घुटने टिका के कहते हैं कि यीशु ही प्रभु है.
We'll be saying the same thing, but we'll be standing.
और हम भी वो कहेंगे परंतु हम खड़े होके कहेंगे.
Because we'll have no sin.
क्योंकि हमारे पास पाप नहीं.
And there will be no fear.
और इसलिए डर नहीं.
There will be no quaking.
और यानी कांपना नहीं.
That's what the law does.
और ये व्यवस्था जो किया था.
That's what happens to those who are under the law.
और जो व्यवस्था के नीचे थे उनके साथ यही हुआ.
And he says, but there's something for those that aren't under the law anymore.
परंतु उसके बारे में नीचे वो कहता है कि जो व्यवस्था के अंदर नीचे नहीं है उनके साथ क्या हुआ है.
And that's verse 22 and 23.
और 22 और 23 जब देखते हैं.
And 24.
और 24.
You see, we're come unto Mount Zion.
वो कह रहे कि हम लोग सियोन पहाड़ के पास आए हैं.
It's the city of the living God.
और ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर के नगर है.
The heavenly Jerusalem.
वो स्वर्ग यरूशलेम है.
To an innumerable company of angels.
और जहाँ पे लाख स्वर्गदूत हैं.
To the general assembly and church of the firstborn.
जहाँ पे पहलौठे की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं.
And notice, they're written in heaven.
और इनका नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं.
My name's written there.
और मेरा नाम वहाँ पे है.
And to God, the judge of all.
और जो सबके न्यायी परमेश्वर के पास.
And to the spirits of just men made perfect.
और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं.
And to Jesus, the mediator of the new covenant.
और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु.
And to the blood of sprinkling that speaketh better things than the blood of Abel.
और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है.
The blood of Abel still speaks.
और हाबिल का जो लहू ना अभी भी बात कर रहा है.
It still talks about judgment because of sin.
और ये अभी भी न्याय के बारे में बता रहा है पाप के द्वारा पाप के लिए.
But the blood that we come to speaks better things.
परंतु हम जो लहू के पास आए हैं वो अच्छी बातों को हमारे लिए कहता है.
Your judgment is past.
वो कह रहे हैं कि तुम्हारा न्याय चुका गया है.
Your judgment is found in Christ.
और तुम्हारा जो न्याय दंड जो यीशु में दिया गया.
And you have no cause for fear.
और इसलिए तुम्हें डरना नहीं है.
You have no cause to quake.
और कांपना अभी नहीं है.
And that's an important thing that he wants to have in our mind.
और इसीलिए ये चीज को हमारे मन मस्तिष्क में रखना जरूरी है.
Someone read verses 26, 27, and 28.
26, 27, 28 कोई पढ़े.
उस समय तो उसके सर से गति को मिला दिया सरकार उसे यह प्रतिज्ञा की है एक बार फिर मैं केवल गति को वरन आकाश को भी लग और यह वाक्य एक बार की इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तु से मिलाई जाती है वे गति भी वस्तु के होने के कारण डल जाएगी ताकि जो जो वस्तु में मिलाई नहीं जाती वे खत्म बनी रहे इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित हमेशा के इसके रास्ते में जिससे वह प्रसन्न होता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग.
So the writer says,
यहाँ पे लेखक कहते हैं
that the Israelites, when they came to Mount Sinai,
और जो इज़राइल लोग सीनै पहाड़ के पास आए,
God's voice shook the mountain.
और परमेश्वर का जो आवाज था पहाड़ को हिला दिया.
And they were afraid because the whole ground was shaking.
और जो ये भूमि कांपने लगा वे लोग भी डरने लगे.
I remember going to Kathmandu.
और जब ये काठमांडू जा रहे थे
not too long after the earthquake that devastated the city,
और वहां पे जो भूकंप हुआ था भूडोल हुआ था उससे कई दिन के बाद
And I remember seeing the videos of the ground moving.
और वहाँ पे वो देखे थे कि वो वीडियो देखे थे कैसे वो यानी वो जमीन कैसे खिसक रहा है हिल रहा है.
And if you've been to the seaside,
अगर आप यानी समंदर की ओर देखेंगे जाएंगे.
And you see the waves of the water going up and down.
और समंदर की जो यानी लहर है ऐसे ऐसे कैसे उठ रहा है नीचे गिर रहा है.
The Himalaya mountains in Nepal were moving from my height.
और जो हिमालय पहाड़ है उनकी हाइट में ऐसे उठ रहा है दब रहा है उसी की तरह वो यानी तरंग आ रहा है उसी की तरह और आपको कैसा लगेगा उसी के बीच में खड़े होने के बाद
That's the sort of thing that the lost have to look forward to.
That the sort of things
that those that don't believe have in their future.
और ऐसा ही होगा जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए अंतिम दिनों में
You see, but we don't have to fear.
परंतु देखिए हमको भय करना जरूरी नहीं है
We don't have to shake.
हमको कांपना नहीं चाहिए
Because our price has been paid.
क्योंकि हमारा मूल्य मसीह ने चुकाया है
He says, his voice shook the earth back then.
और यहाँ पे लिखा जाता है कि उसका आवाज जो है धरती को हिला डाला पहाड़ हिला डाला
And he says, but now once more,
परंतु अभी वो कहीं से ज्यादा
I shake not the earth only, but also heaven.
वो यहाँ पे कह रहे हैं कि खाली यानी आकाश को नहीं लेकिन पृथ्वी को ही भी हिलाऊंगा
Now remember, God doesn't exist within time. God exists outside of time.
परमेश्वर जो है वो समय से बाहर है
He is eternal.
वो अनंत कालीन है.
He is the creator of time and not bound by it.
अब वो समय को वो खुद तैयार किया है, इसलिए समय से ऊपर है वो.
And so this shaking that's being talked about is an already and a not yet.
और ये जो हिलाने का बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, वो पहले से हो चुका है और कुछ नहीं भी हुआ है आने वाले दिनों में होगा.
It's already happened and it yet hasn't happened.
और ये हो भी चुका है और आने वाले दिनों में भी होगा
You see, when Jesus Christ redeemed us,
और जब यीशु मसीह हमें छुटकारा दिए
when he sacrificed himself and rose again,
और जब अपने आप को बलिदान किए और तीसरे दिन जी उठे
he shook not only the earth, but the heavens.
वो खाली धरती को नहीं हिलाए परंतु स्वर्ग को भी हिला दिए
And I'm not talking about the stars.
मैं ताराओं की बात नहीं कर रहा हूँ
I'm talking about the place where God dwells.
अब मैं जहाँ पे परमेश्वर रहते हैं उसी का बात कह रहा हूँ
Because a shaking, what the writer is telling us, what a shaking does,
और ये जो यानी हिलाया गया
It removes those things that have been shaken.
और लिखा जाता है कि वो सारे चीज को वो यानी वहाँ से निकाल दिए
To make way for something new.
ताकि एक नई जगह बन जाए नए चीज के लिए
Do you remember what we talked about?
आप याद कर रहे हैं हम लोग किस बारे में बात किए थे
Until the resurrection of Christ, those that had died before had to wait.
और यीशु मसीह के यानी जी उठने से पहले मरने और जी उठने से पहले जितने लोग पुराने नियम में मरे थे
But when he died and when he rose again, their sins were paid for.
और जब उनके यानी यीशु मसीह जी उठा और उनका उनके लिए भी बलिदान वो हो गया लागू
immediately be in the presence of God.
वे लोग तुरंत परमेश्वर की यानी उपस्थिति में आ गए
That was the shaking of heaven.
और ये था वही स्वर्ग को हिलाया जाना
That was the death knell to Satan.
और ये जो शैतान का वो हार था मृत्यु था
When you read in Genesis,
और जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं
When God says to Eve,
जब परमेश्वर यानी हब्बा को कह रहे हैं
The serpent will bruise your heel, but you will bruise his head.
तो तुम उसके पैरों को रौंदोगे और तुम्हारे वो यहाँ पे एंकल को मारेगी
That happened at the cross.
वो क्रूस पे ही हुआ
That was Satan receiving the death blow.
और वहाँ पे ही शैतान के ऊपर परमेश्वर ने अपने पांव को रखा
And he's been on his death bed ever since.
और वो अब तक वो वही डेथ बेड पर है
awaiting the day that God has appointed to cast him into the lake of
fire. ऐसा समय को अपेक्षा कर रहा है कि परमेश्वर एक दिन उसे आग
And so at the death of Christ, the heavens and the earth were shaken.
और वो इस मसीह यीशु के वो मृत्यु जो था वो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला डाला
so that those that were before unable to be in the presence of God could now be in the presence of God
जो यानी हमारे पहले जो परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं आ पा रहे थे अभी यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के उपस्थिति में आ पाए
so that when a saint now dies when a Christian dies
और जब एक मसीह भी मर रहा है मरता है
they're absent from the body present with the Lord
वो अपने शरीर से बाहर और परमेश्वर की उपस्थिति में
that required a shaking of heaven
और यहां पे भी यानी एक स्वर्ग को हिलाया जाना है
and yet we look forward to a shaking in the future
और एक भविष्य में एक यानी हिलाए जाने के लिए हम अपेक्षा कर रहे हैं
we look at verse 28
28 को जब देखते हैं
wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved
इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं
the kingdom of Christ is eternal
और जो यीशु मसीह का राज्य है वो अनंत कालीन है
and there will be a shaking of the heavens and the earth
और वहां पे और आने वाले दिनों में एक आकाश स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाया जाएगा
Peter tells us there will be a new heaven and a new earth
पत्रस कहते हैं कि एक नया पृथ्वी एक नया आकाश होगा
because this heavens now and the earth now will pass away
क्योंकि अभी जो आकाश है अभी जो पृथ्वी है वो यानी मिट जाएगा
now if that means a change of form or brand new I don't know
ये मुझे पता नहीं कि ये शायद पूरा होगा या उसको बदल दिया जाएगा या नया वाला लाएंगे ये मुझे पता नहीं
but I know it will not be like this place
परंतु मैं ये जानता हूं अभी जो जैसे चल रहा है वैसा वाला कुछ नहीं रहेगा वहां पे
I'm not talking about India.
मैं भारत के बारे में नहीं बोल रहा
हूं It will not be full of sins.
वहां पे पाप नहीं होगा
There will be no death.
वहां पे मृत्यु नहीं होगा
It will be all to the glory of Christ.
यहां पे खाली परमेश्वर के लिए यानी मसीह के लिए महिमा ही होगा
So if you take these things in,
अगर ये सारी चीजों को हमारे अंदर ले लेते हैं
if you understand them,
और इसको समझ लेते हैं
then go back to verse 15,
और 15 को हम जाएंगे देखेंगे
and look diligently at Christ.
और लिखा जाता है ध्यान से मसीह की ओर देखना है
continue to focus upon him
और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है
so that at the end of verse 28
और जब 28 के नीचे लिखा जाता है
we have grace where we may serve God acceptably with reverence and godly fear
लिखा जाता है अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें
that is not the sort of fear where you're shaking in your boots
in your
that's not the sort of fear that you're shaking that we were talking about
abhi jo yani hilaye jane ke bare mein baat kar rahe the wo yani hilaya jana nahi hai
that's godly reverence
ye parmeshwar ke samne bhay hai
this is what the writer has been talking about the whole time
aur aaiye ibrani ka lekhak sara samay mein yahi cheez ko keh rahe hain
how could you read and study this book
aur kaise aap ye kitab ko padh sakte hain aur dhyan kar sakte hain
and not come away with an exalted view of Jesus Christ
aur masih ke paas unko yani unke sarvopari unko saab se upar rakh ke aap kaise yani nahi kar sakte hain
not have your breath taken away by who he is
aur yani wo kaun vyakti hai wo kaisa vyakti hai ye sahi mein janne ke liye utsuk nahi hona hai
and be overwhelmed with a desire to serve him
isliye hum aanandit hoke uski aaradhana jaise hum kar payenge
so he's saying remember these things
isliye wo keh rahe कि याद कीजिए सारे चीजों को
keep them in your mind and focus upon them
और इसको ध्यान में रखें मन में रखें इसे
where in scripture
कहां पे शास्त्र में
are the greatest terrors of hell described
greatest
terrors
okay कहां पे शास्त्र में ऐसे यानी भयंकर चीजों को लिखा गया है great danger भयंकर चीजों को लिखा जाता है
What someone say? Revelation?
Yes. Revelation.
I personally would disagree.
मैं अगर मेरे हिसाब से कहूं तो मैं इसके साथ नहीं हूं.
There is great tribulation on this earth talked about.
और ये धरती के बारे में यानी एक महाक्लेश आएगा बोल के लिखा जाता है.
But when it comes to hell,
परंतु नरक के बारे में जब बात करते हैं,
it says they'll be cast into the lake of fire.
और लिखा जाता है वहां पे यानी आग की झील में डाला जाएंगे
and there's not a lot of description about it
और इसके बारे में कहना और इतना जरूरी नहीं है
so what else maybe the old testament
और पुराना नियम कहां पे फिर लिखा जाता है जोएल
जोएल जो little bit
या और जोएल कुछ लिखा जाता है और डैनियल
डैनियल little bit
छोटा Ezekiel.
Ezekiel, yeah, a little bit.
Isaiah.
Tiny bit.
थोड़ा सा.
I'm not going to ask you to turn to them.
मैं नहीं कर रहा हूँ आप उस तरफ यानी आपके बाइबल खोलिए बोल के.
But it is the words of Christ in the Gospels.
परंतु परमेश्वर का सुसमाचार के अंदर.
He says more about hell than all the writers of Scripture combined.
यानी बाइबल के जितने भी लेखक नरक के बारे में कहे हैं उससे कहीं ज्यादा यीशु मसीह नरक के बारे में कहे अपने सुसमाचार में.
He describes it in such a way where it's hard to get it out of your mind.
और वो नरक को ऐसे यानी उसको दिखाया है, डिस्क्राइब किया है, आपके मन से भी सोचना बाहर हो जाएगा.
And it was very real to those in Judea and Jerusalem.
और जो यरूशलेम और यहूदा में थे, उनके लिए सही में सच्चाई.
When Tommy and I arrive every morning.
और जब भाई और टॉमी जब सुबह आते हैं.
We come through this back road into the gate.
और ये पीछे तरफ से गेट होके वो आते हैं.
And there is what used to be a quarry. Quarry, big stone quarry.
Okay. उधर छोटा इंसी कौन सी जगह अच्छी छोटी किसी ने पत्थर उठाने की इंसी जगह है.
And some water has filled it up a little bit.
और वहाँ पे कुछ यानी गड्ढा है और गड्ढे में थोड़ा पानी है.
And it's very stagnant water.
और बहुत ही खराब पानी है.
A breeding ground for mosquitoes.
और वहाँ से यानी मच्छर सब आते हैं.
But it's become a dump.
और उसको कूड़ेदानी किया गया है उसको.
And rubbish from all around Korda is just taken there and thrown in.
और चारों तरफ से कूड़ा लेके वहाँ पे लोग डाल रहे हैं.
And fires are lit.
और वहाँ पे आग लगा रहे हैं.
And to try and burn away the rubbish.
और ताकि वो जैसे यानी इर्द-गिर्द जो कूड़ा गिरा हो उसको जला दे.
But interestingly, the cows and other animals go there.
परंतु ये देखने के लिए अचंभा लगता है कि गाय बकरी भेड़ जो है वो पानी के अंदर जा रहे हैं.
Because there are little insects and worms that are within that rubbish.
और वो भीतर छोटा छोटा कीड़े मकोड़े हैं.
That they can eat upon.
और वहाँ पे वो जाके वो सारा चीज को जैसे वो खा पाएंगे.
That is one of the closest descriptions you can get to hell.
और मैं बता सकता हूँ कि यानी नरक का एक व्याख्या वहाँ पे मैं देखा वो कैसा होगा वहाँ पे वो व्याख्या को देख पाया.
There was a valley outside of Jerusalem.
और यरूशलेम में एक यानी झील है.
Back in antiquity, it was owned by a man named Hinnom.
और हिनोम बोल के एक जगह एक लोग का नाम के हिसाब से.
And after his death, it passed to his sons.
और इसके मृत्यु के द्वारा ये उसके बेटों के तक आया.
At some point, whether it was his sons or not, we're not sure.
और कितने जगह पे ये उनके बेटे थे ये श्योर नहीं.
That valley was used to worship Molech.
और ये जो जगह उसको इस्तेमाल किया गया मोलेक जो नाम है उसको आराधना करने के लिए.
One of the false gods of the Moabites.
और जो मोआबाइट्स जो है उनका एक झूठा देवता को.
The descendants of Lot.
लूत का वंश.
And in that valley, they would cause their children, these little ones, to pass through fire.
और वो जगह पे क्या करते थे? छोटे-छोटे बच्चों को आग से ऐसे लेके जाते थे.
And those children would die.
और वो बच्चे वहाँ पे मर जाते थे.
Sacrifice to the false god.
और ये झूठे देवी देवताओं के लिए वो बलिदान करते थे वहाँ पे.
Later on, King Josiah comes along.
और जो योशिया बल्कि जो राजा उसके वो आए.
And he takes things and defiles it so it can no longer be used for Molech.
और इसीलिए उसको आया उसको नाश किया वो जगह को तोड़ दिया ताकि और मोलक के लिए उसको और आराधना ना किया जाए.
At that point it's called the Valley of the Sons of Hinnom.
और उसी के समय में वहाँ पे कहा गया हिनोम जगह के वो लोगों के लिए जगह बोल के.
And he takes it and he makes it the refuse dump of a city.
और वो उसको लेके यानी एक नगर का एक छिपने का स्थान बनाया.
So any of the rubbish that you would have in your household.
और आपके घर में उनके घर में जितना भी यानी खराब चीज है
would be thrown there.
और वो वहाँ पे गिराया जाता था.
Any of the dead animals that would you find by the street.
और जो यानी रास्ते पे जितने पशु मर जाते हैं
would be cast there.
और वहाँ पे गिराए जाते हैं.
any human being that died when no one knew who they were.
Aur yani koi bhi pehchan wala nahi aisa aadmi agar mar jata hai
would be cast there.
Usko wahan pe dala jata hai.
And it became known as the worst place in Jerusalem.
Aur Jerusalem mein ek yani ek kharab jagah bolke usko kaha gaya.
There were always fires burning.
Aur wahan pe hamesha aag jo hai wo jal raha hai.
And there were always insects and worms and other things feeding.
वहाँ पे हमेशा कीड़े मकोड़े ऐसे खा रहे हैं वहाँ पे.
So that the animals would go and they would try to find those things.
और इसीलिए ऊपर यानी जो पशु होते हैं वो जाके वहाँ पे ढूंढते हैं पानी के लिए.
In Greek, that valley was known as Gehenna.
और जो ग्रीक भाषा में उस जगह को गहना बोल के कहते हैं.
And Jesus describes it as the place where the fire is not quenched and the worm dies not.
और यीशु मसीह उसको यहाँ पे ऐसे व्याख्या कहते हैं कि वहाँ का आग कभी नहीं बुझेगा बोल के.
And he says those that are cast there are going to experience the fire and they're going to experience the worm.
और जो लोगों को वहाँ पे गिराया जाएगा वो आग और वो कीड़े मकोड़े हैं उनका वो उनको खाएंगे.
It is a vivid description.
और ये एक सही में यानी खराब व्याख्या है.
That no one would want.
और कोई भी उन्हें वहाँ पे जाने के लिए कभी नहीं सोचेगा.
And Jesus gives us that.
और यीशु मसीह नरक के बारे में ऐसे कहते हैं.
You see, that's what those that don't know him look forward to.
और जो जो व्यक्ति उन्हें नहीं जानते हैं वे लोग वहां पे जाएंगे.
Let us have grace.
और इसीलिए लिखा जाते हैं अनुग्रह हमें मिले.
Whereby we may serve God acceptably.
और जैसे कि अनुग्रह साथ जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सके.
With reverence and godly fear.
जैसे हम भक्ति के और भय के सही.
For our God is a consuming fire.
क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है.
He is not like the idols of the Hindus.
और हिंदू देवादेवी के जैसे एक मूर्ति हमारा परमेश्वर नहीं है.
They have no power.
और क्योंकि उनका सामर्थ कुछ नहीं है.
They have no ability.
उनके पास कुछ सक्षमता नहीं है.
Our God is a consuming fire.
परंतु हमारा परमेश्वर जो है भस्म करने वाले परमेश्वर है.
And yet he invites us to be with him.
और यहाँ पे अभी वो हमें स्वागत कर रहे हैं कि उसके साथ आने के लिए हमें.
And the only way that's possible is through the blood of Christ.
और एक ही मार्ग के द्वारा एक ही रास्ते के द्वारा संभव है वो है यीशु मसीह का लहू.
Because he justifies us.
क्योंकि वो हमें धर्मी ठहराया है.
And he's sanctifying us.
हमें पवित्र ठहराया है.
And he will glorify us.
और हमें आगे आने में जिन्होंने महिमा देंगे.
And all of these things that he's been talking about point to him.
और ये जितने सारे चीजों में वो बात किए सारे चीजों में वो यीशु को ही दिखा रहा है.
And he's done with the warnings.
और वो सतर्क सारे वाणी को कहे.
He's done with the difficulties.
वो सारी समस्याओं के बारे में कह दिए.
If all that he said thus far doesn't get you to look at Christ, he doesn't know what else will.
और इतना सारा कहने के बाद अगर आप यीशु की ओर नहीं देख पाते हैं तो और आपको क्या वो कहेगा.
So in chapter 13 that will start tomorrow.
और जब कल हम 13 अध्याय को चालू करेंगे.
He says let brotherly love continue.
इसीलिए वो कहते हैं कि हम क्या भाइयों में प्रेम रखें.
And that is the theme of the whole chapter.
और ये है ये पूरा थीम ये पूरे किताब या पूरे अध्याय का.
So in 12 chapters he's been building up Christ.
और यहाँ पे 12 अध्याय में वो यीशु मसीह को उठा रहे हैं बना रहे हैं.
He's been giving you every single reason to love him.
और यानी हर एक कारण दिखा रहे हैं ताकि आप जैसे यीशु मसीह को प्रेम कर सके.
To diligently seek him.
और ध्यान से उसके और जा पाए आप.
To fulfill the greatest commandment.
और जो आज्ञाएं दिया गया है उसको आप पूरा कर सके.
And then he says love your neighbor.
उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो.
Amen.
Amen.